सो जाते हो, स्वप्न देखते हो तो बड़ा विशाल दिखता है, लेकिन जिसकी सत्ता से दिखता है उसके आगे वो तिनके गिनाई भी नहीं है। न जाने से जगत कितनी बार बन बन के नाश हो गई। लेकिन जिसकी सत्ता से रात को सपना बनता है उस सत्ता का पता नहीं होता, उसलिए सपने का जगत बड़ा लगता है और सत्ता नहीं भासती। सत्ता का ख्याल आ जाए तो ऐसे जगत तो रोज बन बन के चले जाते सपने। ऐसे ही चेतन सत्ता के आगे ये जगत कुछ भी नहीं। सिनेमा के अंदर बैठे हैं अंधेरे में तो पर्दे का जगत बहुत बड़ा लगता है, बाहर आ जाओ तो सिनेमा क्या होता है, थिएटर क्या होता है, उसके पर्दे पर चलचित्र क्या कीमत रखते हैं। सिनेमा थिएटर में देखोगे तो बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया दिखेगा एक पर्दे पे, लेकिन आकाश में आ जाओ, गगन मंडल में, जहाज में मुसाफिर कर दो, थिएटर इतना लगेगा, एक ईंट पड़ा है। हम देखते हैं जहाज में जब जाते हैं ना, मकान देखते तो हंसी आ जाती, गहरे नाव लेकर गए डैम पर, 2 घंटे 40 मिनट लगे, पानी का बहाव भी था, बड़ा परिश्रम भी हुआ। जहाज में यहां से बैठे बॉम्बे जा रहे थे, जहाज उठा तो नजर पड़ी कि नीचे तो डैम है, बस जहाज उठा और निहारा तो ये वासना दे दो। हल्के साधनों में ओ डैम भी बड़ा लगता, दूर लगता, बढ़िया साधन से देखो तो जरा सा ऊपर उठो तो ये डैम वासना डैम, यहां से 16-17 किलोमीटर है। ऐसे अपने आत्म विचार में देखो तो जगत अति तुच्छ भासता है, समाधि में देखो तो जगत का कोई गंध नहीं। जब मूर्खता से देखते हैं, मोह ममता से देखते हैं तो तेरा मेरा बड़ा लंबा चौड़ा लगता है। जब ईश्वर को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, उसकी सत्ता को देखते हैं तो ये कुछ नहीं, तिनके गिनाई है। इसीलिए बड़े बड़े सम्राटों ने राज छोड़ दिया उस आत्मा राज को पाने के लिए। लोग बोलते हैं बड़ा राज था, लेकिन उनको जो आत्मा राज मिला उसके आगे वो राज कुछ नहीं। हो एकांतवास, मौन, प्राणायाम, नियम और उत्साह, कईयों को अच्छी जगह मिलती है, पवित्र जगह मिलती है जहां महान बनने की संभावना है, वहां भी वैसे ही रह जाते हैं। कई तो प्रतिकूलता में भी महान बन लेते, झंझटों के बीच घर में कुटुंब में परिवार में रहते हुए भी तड़पते हैं बेचारे, और सुबह 4 बजे उठते हैं, ध्यान में बैठते हैं। जय हिंद स्कूल का आचार्य आया था इधर, मुख्य मालिक भी था आचार्य भी था, बोले बापू बहुत मजा आती, रोज 4 बजे आंख खुल जाती, 4 से 7 तक बैठता हूँ पूजा पूजा में, लेकिन आनंद इतना आता है कि बस उसका वर्णन नहीं होता है। घर में बड़ी इतनी हाई स्कूल संभालना, 100-200 शिक्षकों को संभालना, लाखों रुपए का मैनेजमेंट संभालना, और सुबह 4 बजे उठ के ध्यान में बैठते, ऐसे लोग भी जब तक रुचि नहीं होती है परमात्मा में तब तक अनुकूलता मिल जाती तो भी आदमी उपयोग नहीं कर सकता। पहली शर्त है कि रुचि होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति की रुचि होना चाहिए, परमात्मा के राज्य में पहुंचने की रुचि होनी चाहिए। रुचि गोपीचंद की थी तो गुरु ने डांटा फटकारा धिक्कार दिया तो भी गोपीचंद डटा रहा, रुचि नहीं है तो गुरु पुचकारते तो भी हम लोग भाग जाते। आत्मपद में रुचि होना चाहिए, अविवेक के आदमी को संसार में रस आता है और परम विवेक के आदमी को परमात्मा शांति में रस आता है। जप और प्राणायाम करें, भले एक घंटा आधा घंटा ही निश्चित आसन पर बैठे, निश्चित समय बुद्धि सात्विक हो जाए, मन पवित्र होने लगेगा, शरीर निरोग होने लगेगा। जप करो, मैं जप में मनोराज आ जाए तो जोर के ओम नो जप करो, मनोराज टूट जाए। राग के बिना, द्वेष के बिना चिंतन होता है, उस चिंतन का नाम मनोराज। आप लोग भी, अज्ञानी को भी ऐसा होता है, किसी वस्तु में राग होता है तो चिंतन होता है, किसी से द्वेष होता है तो उसका चिंतन होता है, और कभी कभी राग द्वेष नहीं होता है मन में, फिर भी मन की पट्टियां चलती रहती, उसको मनोराज बोलते। इसलिए ओम करके उस पट्टी को काट दिया जाता है, फिर एडजस्ट हो जाती है, फिर काट दो, गैप पड़ जाती है उस पट्टी की, खाली जगह बढ़ जाती है, खाली जगह जो है ब्रह्म है, बिना विचारों की जो जगह है ब्रह्म। आलस्य, निद्रा न हो, तंद्रा न हो, जागृत न हो, निद्रा भी न हो, जागृत भी न हो, सपना भी न हो, तंद्रा भी न हो, लय रस आस्वाद मनोराज भी न हो, बाकी की जो अवस्था है वो ब्रह्म की। निद्रा, तंद्रा, लय, मनोराज, रस आस्वाद ये न हो, अपने उस यार को मिलने के सिवा और किसी से मिलोगे तो बिछड़ जाओगे, अपने आप को खोजे बिना और किसी को खोजोगे तो विक्षेप होगा। इसलिए अपने को खोजो कि तुम कौन, कहां से आए, आखिर कहां जाओगे, खोजते खोजते पता चल जाएगा कि आत्मा है। ये देह तो छोड़ जाएंगे, जल जाएगा, देह जल जाएगा तो धन कहां रहेगा, मिलकत कहां से, देह के संबंधी कहां रहेंगे, कब तक रहेंगे।
इंद्रियों ना मार्ग रोक अने आत्मा ना आवाज ने सांभळो,
इंद्रियों के रास्तों को रोको बाबा, बहुत हो गया, कब तक गटर में घूमोगे, अब आत्मरूपी शिखर पर चढ़ो। गटर में फिसलना सुगम होता है, शिखर पे चढ़ना जरा कठिन होता है, लेकिन शिखर का अपना सौंदर्य है, अपनी हवाएं हैं, अपनी खुशबू है, अपनी विशाल दृष्टि है। गटर में तो विशाल दृष्टि वाला भी कुंठित हो जाता है, दुर्जन का संग करता है तो सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। इंद्रियां बड़ी दुर्जन है, इंद्रियों के भोग में जितना अधिक पड़ेगा उतना बुद्धि कुंठित हो जाएगी, मन विक्षिप्त हो जाएगा, आत्मा के शिखर पर जितना भी चढ़ेगा उतना बुद्धि विशाल हो जाएगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, प्रभु के गीत गूंजने लगेंगे, फिर तुम प्रभु हो जाओगे, प्रभु के गीत और तुम दो न रहोगे, तुम्हारे गीत प्रभु के गीत होंगे, प्रभु के गीत तुम्हारे गीत होंगे, तुम्हारे दिल रूपी सितार से प्रभु का साज निकलेगा। ओम 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 ओम।
तुम तारामाज छे, तुम ईश्वर छे, तुम आनंद रूप छे, तुम पोते ज अस्तित्व रूप छे, तो पछी तुम बार शुं शोधतो करे छे।
तो खुद ईश्वर है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ऐसा अनुभव करो, अपने आप में डूबो, बाहर को, बाहर के सुख के पीछे कब तक गुलामी करोगे, कब तक जख मारते रहोगे, कब तक दीनहीन बनते रहोगे, अपना असली राज्य छोड़कर भिखारियों का कटोरा कब तक लेकर घूमोगे। ये मिल जाए तो ठीक, ये हो जाए तो ठीक, इतना खा लो तो ठीक, इतना देख लो तो ठीक। पहले अपने को देख ले, फिर देख लेना तो क्या खोया है, क्या पाना है इस जगत से तुझे, जो भटक रहा है। तेरा खजाना तेरे पास है तो अपने खजाने की ओर देख। है ताल में मंजिले, मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है तो दिल की ओर देख। मंजिल के ताले, सुख के ताले, सुख किधर ढूंढता है। तेरे दिल में सुख का दरिया लहरा रहा है, अपने दिल की ओर देख। बाहर की आंख बंद कर, भीतर की आंख खोल। ऐ तालबे मंजिले, मंजिल किधर देखता है। दिल ही तेरी मंजिल है तो अपने दिल की ओर देख। मकान दुकान राज्य धन शरीर बिगड़ जाए लेकिन दिल नहीं बिगड़ना चाहिए। दिल नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि दिल में दिल भर रहता है। बुद्धि एक निश्चय करती है और दिल दूसरा कुछ कहता है। बुद्धि की बात हटा दो, दिल की माने, क्योंकि दिल आत्मा के निकट रहता है बुद्धि की अपेक्षा। तो दिल की आवाज सुन, तो क्या चाहता है गहराई से सुन, पवित्रता से सुन। दिल के आवाज और मन के कल्पनाओं में फर्क। दिल तुम्हारा नीरव शांति और प्रेम आनंद चाहता है। रजोतम गुण से आक्रांत जो मन है वो संसार की कीचड़ चाहता है। बुद्धि जब उसमें सहमति देती है तो कीचड़ के तरफ जाता है, और बुद्धि शुद्ध होती है, इनकार करती है, मन को फटकार देती है, सहयोग नहीं देती। बुद्धि मन को सहयोग नहीं देती तो इंद्रियां बेचारी ठप हो जाती। इसलिए आर्यों ने हमेशा बुद्धि को शुद्ध करने पर जोर दिया। बुद्धि शुद्ध होगी तो व्यवहार शुद्ध होगा। शुद्ध बुद्धि के लिए परमात्मा का नाम, जप, ध्यान, प्राणायाम, ये सब शुद्ध बुद्धि करने के उपाय हैं। शुद्ध बुद्धि में ब्रह्मानंद छलकता है। जैसे शरीर में तो सारा चमड़ा है ही है, फिर भी जिह्वा पर ही मिठास आती है। जीभ और होठों पर ही मिठास का स्वाद आता है, मुंह में ही मिठास आती है। तो वहीं चर्म, लेकिन वहां मिठास को पकड़ने का, स्वाद को पकड़ने का खास जगह है। ऐसे ईश्वर तो है सर्वव्याप्त, आपके रोम रोम में ईश्वर जितना है, हृदय में है। लेकिन जब शुद्ध हृदय होता है वहां उसका अनुभव होता है। जैसे मुंह खुलता है तब मिठास का अनुभव होता है, ऐसे अशुद्धि रूपी कंकड़ पत्थर हट जाते हैं, अशुद्धि रूपी पर्दा हट जाता है, तो अब आत्मानंद का स्वाद आता है। और अपने को देह मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, जगत को सत्य मानना बड़े में बड़ी अशुद्धि है, भोगों से मेरे सुख मिलेगा ये बड़े में बड़ी अशुद्धि है, नालायकी है, अज्ञान है मन का। भोगों में सुख बुद्धि, जगत में सत्य बुद्धि, देह में अहम बुद्धि, ये अशुद्धि के कारण है। आत्मा में अहम बुद्धि, जगत में मिथ्या बुद्धि और भोगों में विरक्तता बुद्धि, ये शुद्धि के लक्षण है। यदि गहराई से चिंतन करो ना तो आपको लगेगा कि जगत स्वप्न है और व्यर्थ है। जैसे रात्रि का स्वप्न चालू स्वप्न उस समय सत्य भासता है, जगने पर मिथ्या हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान के आंख से जगोगे तो ये जगत मिथ्या हो जाएगा। थोड़ा ही विवेक करो तो भी मिथ्या दिखता है। बचपन मिथ्या, जवानी मिथ्या, बीत गई कल की बात आज बीत गई, स्वप्ने तुल्य हो गई। नदी पर्वत नाले जंगल जहाँ बस्तियां थी वहां उजाड़ हो गया, जहाँ उजाड़ थे वहां बस्तियां हैं, जहाँ खड्डे थे वहां सब पर्वत निखर आते हैं, जहाँ पर्वत थे वहां समुद्र लहरा रहे हैं। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, हम सफर में, तुम सफर में, साधक ये सारा जहां सफर में है, स्वप्न का चित्र कैसे एक जैसा रह सकता है? गहराई से देखो सब सफर में, सब बदल गया, बदलता जा रहा है। कहीं बस्तियां हो गई, कहीं सड़कें हो गई, और कहीं सड़कें उजाड़ हो रही। रोज प्रतिपल प्रति सेकंड सब बदला जा रहा है। तुम्हारे शरीर के कण बदले जा रहे हैं। सत्य तो वो है जो कभी नहीं बदलता। जरा विवेक से देखे तो भी जगत मिथ्या दिखता है। लोभी की आंख का प्याला कभी नहीं भरता। इस मिथ्या जगत के सुख में ही अपने को खो डालता है। और कल्पनावादी की कल्पना का भी अंत नहीं आता। ईश्वर ईश्वर करके भटकता रहता है। बिना नाम के नामी को खोज रहा है। ईश्वर के ईश्वरत्व को जानो। भगवान भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या होता है? बस भगवान। ऐसे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, कल्पना कर ली। भगवान का अर्थ है भव माना, जो भरण पोषण की सत्ता दे रहा है। ग माना गमना अगमन, क्या जो नियंत्रण कर रहा है तुम्हारे भीतर व्यष्टि समष्टि में। वा माना वाणी का जो अधिष्ठाता है। वैश्री मध्यमा पशंतियों परा, इन चारों वाणियों का जो आधार है तुम्हारा चैतन्य। तुम वैश्री उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते, मध्यमा उसकी सत्ता के बिना नहीं बोल सकते, पश्यन्ति और परा भी उसकी सत्ता के बिना बोल और देख नहीं सकते। तो तुम दृष्टा हो इन चार वाणियों का। तो भ ग वा ये वाणियों के अधिष्ठान आधार और दृष्टा तुम हो। जो वाणियों का आधार और दृष्टा है वो भगवान शब्द के वकार का अधिष्ठान इशारा है। न माना ये सब नीति नीति करने पर भी जो अवशेष रह जाए, आंख ने जो देखा वो कुछ नहीं मिथ्या है, कान ने जो सुना है वो मिथ्या है, जीव ने जो चखा मिथ्या है, मन ने जो सोचा वो मिथ्या है, बुद्धि ने जो कुछ जगत के बारे में विचार किया सब मिथ्या है। ना ना ना, बुद्धि भी हटा दो, बुद्धि भी कुछ नहीं, मन भी कुछ नहीं, जगत भी कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं करते करते बाकी जो रह जाए, ना 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 करते जो रह जाए वही भगवान है। भव माना भरण पोषण की सत्ता देने वाला, ग माना गमनागमन का अधिष्ठान, न माना व माना वाणी का आधार, न माना नीति नीति करने पर जो रह जाता है, इसका नाम भगवान है। वो बताओ भगवान तुम्हारे से कितना दूर है? तुम्हारे शरीर को भरण पोषण की सत्ता, माता के शरीर को बच्चे के भरण पोषण की शक्ति, तुम किसी का भरण पोषण कर रहे हो तो किसकी सत्ता से कर रहे हो? हाथ की सत्ता से, पैरों की सत्ता से? नहीं, मन लगता है तब। मन को क्या अपनी निजी सत्ता है? ना, बुद्धि सहयोग देती है तब। बुद्धि को क्या अपनी सत्ता है कि नहीं? वो जो भरण करने की सत्ता दे रहे हैं भगवान, उसी से तुम बच्चों का भरण कर सकते हो, अपने शरीर का भरण कर रहे हो, मन और बुद्धि का भी उसी की सत्ता से भरण पोषण हो रहा है। ये है भगवान शब्द का भ का अर्थ। और वह भगवान भारतीय दर्शन कहता है ईश्वर एक है, और वही भारतीय दर्शन कह रहा है उसी दर्शन के तरफ ले जाने वाले ऋषि कह रहे हैं भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, फिर अनेक भगवान कह रहे हैं कि वो अनेक में है एक, लेकिन जहां प्रकट हुआ वह अनेक में उसी का नाम है, अनेक नाम उसी के हैं। शिव में वही भगवान है, वशिष्ठ में वही भगवान है, विष्णु में वही भगवान है, उनको सदा प्रत्यक्ष है, उसलिए वो भगवान है। तुमको वो उस तत्व में, उस असलियत में मैं बुद्धि नहीं हुई, उसलिए तुम अपने को अज्ञानियों के वचनों के अनुसार कुछ मान रहे हो, वरना तुम भी वही भगवान हो। भरण करने की सत्ता वो तुम हो, गमनागमन का सत्ता तुम हो, वाणी को स्पोरने की सत्ता तुम हो, नाम न करते भी जो बचता है वो तुम हो। सीधी तो बात है। अब अपने को न मानो तो तुम्हारी मर्जी, शास्त्र कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म हो, सचमुच सब जगह वो ब्रह्म है, परमात्मा है, व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन तुमको इस चैतन्य में प्रेम होगा तो प्रकट होगा। अग्नि तो लकड़ में पूरी भरी हुई है, लेकिन जहां से प्रकट होती है वहां उसकी विशेषता दिखती है। बलवान नल जल में रहता है लेकिन अप्रकट है, सामान्य रूप में है, उसका कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। लकड़ी में अग्नि है लेकिन सामान्य रूप से है, जब प्रकट होती तो उसका प्रकाश और तेज मिलता है। ऐसे तुम सामान्य रूप में तो हो चेतन, भगवान हो, लेकिन पता नहीं, इसलिए लाभ नहीं उठा पाते। पता चल जाए कि आज तक जिसको दूर मान रहे थे, पता नहीं चल रहा था तो ईश्वर ईश्वर कह रहे थे, मेरा नाम ही वो ही था, मेरा नाम ही वो था, पता नहीं चला तो समझ रहे हैं ईश्वर है कहीं हमसे दूर है। जब आप खो गए तो पता चलेगा कि मेरा ही नाम ईश्वर था, ये आपा बाहर का आरोपित था, सुन सुन कर माना था, मैं कर्शन भाई हूँ, मैं जमदादास हूँ, मैं मफतलाल हूँ, मैं आशाराम हूँ, मैं केवल राम हूँ। बस केवल केवल राम तो हो लेकिन इस शरीर को लेकर नहीं, तुम केवल ही राम हो। आशाओं के राम तो हो, आशाओं के दास नहीं, आशाओं के तुम आधार हो, लेकिन शरीर को लेकर नहीं, तुम्हारी असलियत को लेकर। ओम ओम ओम। मुफ्त में लाल तो हो, तुम मुफ्त लाल हो, तुम पैसों से नहीं मिल सकते हो, तुमको पाने के लिए रकम की जरूरत नहीं है, तुम मुफ्त में ही प्राप्त हो, स्वाभाविक ही प्राप्त हो, इसलिए तुम्हारा नाम मुफ्त लाल है। ओ, ओ, ओ। तुम्हारा देह तो परिश्रम से प्राप्त हुआ, माता पिता के 40 दिन के परिश्रम, तुम्हारे खाने पीने के जीने के परिश्रम, तो ये देह का नाम मुफ्त लाल रख दिया। सच पूछो तो तुम ही लाल हो, और सहज में प्राप्त हो, मुफ्त में, मेहनत से जो मिले वो माया है, सहज में जो मिले वो मालिक है, मुफ्त में जो मिले वो लाल है। जो परिश्रम करके प्राप्त हो, अंत में रहे नहीं, और होते समय भय शोक और चिंता दे, इसका नाम माया, इसका नाम माया। और जो कोई परिश्रम किए बिना स्वाभाविक मिले, मिलने की खबर देते ही बेड़ा पार कर दे, मिले तब भी निर्भय और सम्राट बना दे, और जो कभी फिर छूटे नहीं, कभी दिन न बनाए, इसका नाम परमात्मा है। तो तो बोले भगवान को पाने के लिए परिश्रम क्यों करना पड़ता है बाबा जी। भैया मेरे भगवान को पाने के लिए परिश्रम नहीं है, ईश्वर को पाने के लिए कत्ते ही परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कचरा पट्टी हमने भर रखा है ना, जो बेवकूफी भर रखी है जन्मों की, उसको हटाने के लिए मेहनत है। ईश्वर को पाने के लिए तिनका भर उठाने की भी मेहनत नहीं। वशिष्ठ कहते हैं राम जी फूल पत्ते और टांस तोड़ने में परिश्रम है, फूल के मर्दन करने में भी परिश्रम है। आशाराम कहते हैं कि चाय का कप बना हुआ रकेबी में उलटना भी कोई परिश्रम है, कप को उठाकर रकाबी से बाहर रखना भी कोई परिश्रम है। अरे निदान और तो क्या, चाय का घूंट भरना भी कोई परिश्रम है, क्योंकि चाय चाहिए, रकाबी चाहिए, बनाने वाला चाहिए, हाथ में आनी चाहिए, फिर तुम्हारा मुंह झुकना चाहिए, रकेबी तुम्हारी और आना चाहिए, तब एक घूंट भर पाते हो। उसमें इतना भी नहीं, केवल तुम्हारी नादानी छूट जाए तो बस वही वो है। हिंदू को, ईसाई को, पारसी को, पटेल को मनुष्य देखना हो तो कितनी देर, केवल जो मान बैठे हो ये ऊपर ऊपर का सब वो छोड़ दो तो पहले तुम मनुष्य हो बाबा, बाद में तुम हिंदू, ईसाई, पारसी, मुसलमान, पटेल, सिंधी, गुजराती, पहले तुम मनुष्य हो। ऐसे ही तुम पहले ब्रह्म हो, बाद में जीव, फिर जात पात, ये सब बेवकूफी बाद में व्यवहार चलाने मात्र की है। तो भगवान पाने के लिए परिश्रम नहीं है, बेवकूफी छोड़ने के लिए परिश्रम है। ईश्वर के पास आने के लिए परिश्रम नहीं है, ईश्वर से जितने दूर चले गए हैं ख्यालों से, उन ख्यालों को हटाने के लिए परिश्रम है। मैंने क्या वैसा अंधा भी नहीं कर सकता है, मैं करूं तो आंधड़ो पण नहीं करे हो, घर में खोई बैठो तो घर दाणी दे। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सर झुका दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। ये तुम्हारे गीत होंगे, अभी तो संतों के सुनाई पड़ते न, बाद में तुम्हारे हो जाएंगे। अष्टावक्र बोलते हैं तब अष्टावक्र के वचन है, लेकिन जनक इतना सतपात्र है कि घड़ी भर के बाद अष्टावक्र का अनुभव जनक का अनुभव हो जाता है। अब जनक की उसमें गंध, जनक का सुवास, जनक का अनुभव उसमें मिश्रित हो जाता है, बन जाता है सतशास्त्र। अष्टावक्र किसी मूर्ख के आगे बोलते तो गीता न पैदा होती, लेकिन जनक के आगे गीत गाए हैं उसलिए गीता का जन्म हो गया। वशिष्ठ जी ऐसे ही कोई देहात्मवादी के सामने बोलते तो शायद योग वशिष्ठ जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण न होता, लेकिन पूर्ण अधिकारी है मर्यादा पुरुषोत्तम। हे रघुकुल के चंद्रमा, शिष्य में जो लक्षण चाहिए वो सब तुम में है। त्याग है, इंद्रिय संयम है, सरलता है, नम्रता है, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति और मोक्ष की तीव्र इच्छा है तुम्हारे में। साधक में जो लक्षण चाहिए वो तुम में है, और गुरु में जो लक्षण चाहिए वो मुझ में है। मैं भी परम गुरु हूं, मुझे अपना स्वरूप हस्तमल लखवत भासता है, मेरी सदा स्वरूप में निष्ठा है, देह में निष्ठा नहीं, देह में ममता नहीं, देह में अहम नहीं। इसलिए राम जी काम बन जाएगा, और बन गया। राम जी कहते हैं कि भगवान अब मानो दूसरा ही वशिष्ठ हूं, मुझे तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद भी शोक संयुक्त भासता है, मैं इतना आनंद का दरिया हो गया। ब्रह्मा का सुख क्या होता है बाह्य, विष्णु जी का पद क्या होता है, विष्णु तत्व तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन विष्णु का पद क्या होता है, शिव का पद क्या होता है, वे तो एक एक गुण के माया के अधिष्ठाता हैं, लेकिन माया जिससे फूरती वो मैं स्वयं महेश्वर हूं। क्या मजे की खबर है, वाह वाह क्या शुभ समाचार है। ओम 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 सती शीतला आंधा ठार बेड़ा तार, पंखा हांकते रहो सती शीतला को राजी करते रहो, लेकिन सती शीतला तो तुम्हारी आत्मा है, उसको राजी कर लिया ना तो ऊंट पर बैठने वाली देवी और गधे पर बैठने वाली देवी और हंस में बैठने वाली और वाहनों पर बैठने वाली देवियां तुमको देखकर प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है कि परम प्रसन्न। परम आनंद है। और वे तुम्हारे स्वरूप की सत्ता से ही तो देवियां हो भासती है। अब उनको तुम अपना स्वरूप नहीं जानते तो उनको कुछ विशेष समझते और अपने को तुच्छ समझते हो। अपने को देह समझते हो तो तुम तुच्छ हो ही हो, इसमें कोई शक नहीं। और यदि अपने को चैतन्य समझते तो तुम परमात्मा हो ही हो, इसमें शक करना मूर्खों का काम है। अभागे लोग शक करते हैं। जिस दिल में अपने परमात्मा होने में शक हो उस दिल को पिस्तौल लगा दो, अच्छा रहेगा। वो कोई दिल है, वो तो धोखनी है। अपने ईश्वरत्व में, अपने आत्मा में, अपने चैतन्य होने में तुम्हें शक हो रहा है। अच्छा, तुम चैतन्य नहीं हो तो क्या हो? जड़ हो। जड़ को पता है मैं जड़ हूं? नहीं। कि मैं मनुष्य हूं कहां है? कि बाबू ये जो दिख रहा है बाबा वो मैं हूं। जो दिख रहा है उसको पता है वो मैं हूं? जो देख रहा है उसको पता है मैं हूं? नहीं। तो कौन बोलता है? बाबा जी मन की सत्ता से बोलता है। इंद्रियों का सहारा लेकर मन इंद्रियों का उपयोग करता है जीवा का, तब ये बोलता है मैं हूं ये। अच्छा, तो मन की सत्ता लेकर बोल रहा है इंद्रियों का उपयोग करता हुआ, तुम्हारा शरीर बोलता है ठीक है। तो मन को अपनी सत्ता है जो इंद्रियों को सत्ता देता है? मन को अपनी सत्ता है? मन कभी कैसा ही तुम जानते हो। मन बदलता है, बुद्धि के निर्णय बदलते हैं। इन बदलने वाले को भी कोई देख रहा है कि नहीं? बोले हाँ बाबा देखता तो है। वो कौन है? बोले वो मैं हूं। तो वो तुम हो कि शरीर तुम हो, ये तुम जरा ढूंढ के आ जाना।